मन से सदा क्या निकलता है। योगी का तन मन कैसा होता है, सामने सब एक्शंस आते हैं ना। अच्छा, अभी सब ठीक है? सबके पास ठीक आवाज पहुंच रहा है। आज की विषय निरंतर योगी अथवा सहज योगी। जिस भी बात को हम निरंतर कर सकते हैं, सहज बात होती है तो निरंतर स्वतः हो जाती है। अगर जिस बात में हमें मुश्किल अनुभव होता है उसको हम निरंतर नहीं कर सकते हैं। अब ये योग जो बाप आके हमें सिखाता है, यह योग अगर देखा जाए तो वास्तव में बड़ा ही सहज है। वास्तव में सहज है या मुश्किल है, ये तो हर एक का अनुभव अपने आप उसको जवाब देगा। लेकिन जहां तक वास्तविकता की बात है, असली रूप में अगर देखा जाए तो योग शब्द निकला ही तब है जबकि हम आत्माओं का अपने बाप परमात्मा के साथ सदा संबंध है ही है। भले ही अभी हम उस संबंध को भूल गए हैं और भूल जाने के कारण ही हमें फिर से उसको याद करना पड़ता है, और वह याद भी हमें बाप आकर के दिलाते हैं। इसलिए यह योग जो बाप आकर के सिखाता है वह योग बड़ा ही सहज है, क्योंकि बाबा हमें योग शब्द का अर्थ इतना सहज करके देता है जो देखा जाए तो मनुष्य जीवन के लिए वो बात एक नेचुरल बनी हुई है। नेचुरल कैसे है? क्योंकि बाबा कहते हैं योग शब्द का अर्थ, योग को वास्तव में लोग बड़ा ही कठिन मानते हैं, और ईश्वर से योग लगाने के लिए भारत के अंदर भिन्न भिन्न प्रकार से कठिन तपस्याएं करते हैं। लेकिन बाप आकर के हमें योग शब्द को ही इतना सहज बना देते हैं जो हम यह मानते हैं कि योग लगाना कोई कठिन नहीं। योग शब्द को बाबा हम बच्चों को सहज क्या बना देते हैं कि योग माना याद। वैसे तो योग कनेक्शन को भी कहा जाता है, यूनियन भी योग है, कम्युनियन भी योग कहा जाएगा, पर ये सब यूनियन कैसे हो, हमारा बाप से कम्युनियन कैसे हो, उनको सहज बनाने के लिए बाबा पहले हम बच्चों को ये बताते हैं कि योग शब्द को आप याद ही समझ लो। और देखा जाए तो वास्तव में याद मनुष्य आत्मा के लिए एक नेचुरल बात है। अगर हम हर एक अपने जीवन में देखें तो हर एक के पास कई प्रकार की यादें रहती ही हैं। याद करना मनुष्य आत्मा का स्वभाव है। याद हर एक के पास भिन्न भिन्न प्रकार से भिन्न भिन्न बातों की होती है। जीवन में जो कुछ भी पास करते हैं, जो भी हमारी जीवन बीतती है, वह अपने पास यादें बन जाती है। तो बाबा हमें इस बात को बताते हैं कि योग अर्थात याद, याद करना मनुष्य आत्मा के लिए सहज है। याद मनुष्य आत्मा को सहज होती ही है। कई प्रकार की याद, अपने संबंध की याद, अपने जीवन के कर्मों की याद, जिससे भी मिलेंगे, जिनके भी संपर्क में आएंगे, जो कुछ वार्ता आपस में होती रहेंगी वो भी याद रहती है, अथवा ऑटोमेटिक याद आती है। जो भी जीवन में कुछ करते रहो वो अपने पास यादें बनी रहती है। तो बाबा कहते हैं योग अर्थात याद, परंतु कौन सी याद? जो बात हम भूल गए हैं वो फिर से हमें याद दिलाते हैं, है हमारी ही बात। जैसे अगर कहा जाए पहली बात, हम आत्मा है, शरीर के अंदर है, शरीर को धारण करने वाली है, शरीर को चलाने वाली है, शरीर से जो भी कर्म होता है आत्मा ही कराती है। अब मैं आत्मा शरीर से कराती हूँ, मैंने शरीर को धारण किया है, मैं शरीर नहीं आत्मा हूँ, ये बात हमें भूल गई है। होते हुए भी मैं आत्मा हूँ, शरीर को चला रही हूँ, लेकिन होते हुए भी इस बात से हम अनजान हैं, इस बात को हम भूल चुके हैं। वही बात जो बात हम भुला बैठे हैं, जिसके विस्मृति से, भूलने से ही हमें इतना दुख, इतनी अशांति भोगनी पड़ती है, लेकिन वो हमें पता नहीं कि इसके कारण से हमें दुख है, अशांति है। तो उस बात की याद आकर के बाप हमें दिलाते हैं कि वास्तव में तू आत्मा है। वास्तविकता हमें बताते हैं बाबा कि ओरिजिनल तुम क्या है, असल में तुम क्या है। शरीर तो हम देखते हैं, एक छोड़ते हैं दूसरा लेते हैं, शरीर यहाँ ही मट्टी में पांच तत्वों में मिल जाता है। उस समय ये कहा जाता है, माना जाता है, भारत में इस बात को मानते हैं कि आत्मा अविनाशी है, जो शरीर छोड़ के चली जाती है और जाकर के दूसरा शरीर लेती है। लेकिन वो जब मैं शरीर में हूँ, आत्मा शरीर में है, तो मैं स्वयं को आत्मा समझूं, आत्मा ही जान करके शरीर से कर्म कराऊं, ये बात हमें भूली हुई है। वास्तविकता हमारी केवल वास्तविकता ही नहीं परंतु प्रैक्टिकल है, परंतु हम उस बात को भूल चुके हैं और अपने को जिस नाम से, जो शरीर पर नाम है और जिस नाम से सभी हमको बुलाते हैं, वही नाम याद करके हम अपन को समझ के चलते हैं। और जो हमारा ओरिजिनल स्वरूप है, जो हम ओरिजिनल रूप में है, वो भूल जाने के कारण फिर से बाप आकर के वो हमें याद दिलाता है। अब वो याद जो बाप हमें फिर से दिलाते हैं, वो बात हमें फिर से ऐसी याद आवे जो ऐसे लगे कि बरोबर हम ही थे और हम ही हैं, हम ही इससे ये कार्य करा रहे हैं। तो ये हमें याद करना है वास्तविक बात। आए हैं हम इस सृष्टि पर, प्रकृति को धारण करके आए हैं, प्रकृति के खेल में वो हम देख रहे हैं, खेल खेल रहे हैं, कर रहे हैं, और खेल खेलने वाला कौन है, ये वास्तविकता में से भूल हुई है। इसीलिए बाप आकर के फिर से हमें वो वास्तविकता याद दिलाती है। अब हमें उस बात को फिर से याद करना है कि मुझे जब शरीर नहीं था तो मैं आत्मा, और मैं आत्मा अपने उस अविनाशी पिता के साथ थी। अब ये इतनी पुरानी बात हो गई है क्योंकि अनेक जन्म, अनेक शरीर हम लेते आए हैं। इस कर्म क्षेत्र पर अनेक जन्मों से, बहुत समय से हम जन्म मरण के चक्कर में आते, अनेकों के संबंध में आते, अनेक पाठ बजाते, अपनी वास्तविकता को भूल चुके हैं। अब जो बात इतने समय से हम भूल गए हैं, उस बात को बाप हमें फिर से याद दिलाते हैं। तो हमें इस बात को अंदर से फिर से स्मरण करना पड़ता है। वो अपनी बात जो बहुत समय की है, बहुत समय से हम अनेकों के संग में, अनेक जन्मों में, अनेक कर्मों में, अनेक संबंध में आकर के वास्तविकता को अपन भूल चुके हैं, उस बात को फिर से याद करने के लिए हमें उस बात को बार बार स्मरण करना पड़ता। तो हमें उस बात को फिर से याद करना है, उसको जब तक हमारी वो याद स्मृति जागृत हो, तब तक उस बात को हमें बार बार स्मरण करना पड़ता है। अब स्मृति को जागृत करना, अपनी ही बात, अपनी ही वास्तविकता, भले ही बहुत समय से हम भूले हुए हैं, लेकिन जब बाप बताते हैं तो जो अंदर अवनाशी आत्मा है उसको ये बात जचती है, समझ में आती है बरोबर। जो बाबा कह रहे हैं वो बात राइट है, हम वो ही आत्मा है, क्योंकि इस बात को तो हम भारत में, विशेष रूप से भारत में मानते ही है कि हम सब परमात्मा की संतान है। अब इस बात को ही सोचा जाए कि परमात्मा की संतान शरीर तो है नहीं, परमात्मा की संतान जबकि अविनाशी पिता है, अविनाशी पिता की संतान अविनाशी ही बच्चा हो सकता है, और वो अविनाशी आत्मा ही है। अभी इस बात को बाप आकर के हमें बड़ा ही स्पष्ट रीति से समझाते हैं, और वो बात जब हमारे समझ में आ जाती है, समझने के बाद उस बात को हमें फिर स्मरण करके अपनी पुरानी स्मृति को जागृत करना पड़ता है। अब ये याद करना भले ही बहुत समय की भूली हुई बात है, इसलिए उसको जल्दी से याद करना, वो हमारे स्मृति में आ ही जाए, थोड़ा सा समय लगता है। परंतु जबकि हमें ये निश्चय है, अब योग के लिए पहले हमारी बुद्धि के अंदर ये निश्चय पक्का हो कि ये सब स्मृति दिलाने वाला वो ही हम सर्व आत्माओं का पिता परमात्मा है, क्योंकि परमात्मा पिता ही हम आत्माओं को जानते हैं, अथवा सृष्टि के आदि मध्य अंत को भी एक बाप ही जानते हैं। जब हमारे बुद्धि के अंदर इस बात का निश्चय बैठ जाता है, इस निश्चय के आधार से जो बात बाप हमें बताते हैं उसी पर हमारा एक तरफ निश्चय बैठ जाता है, और दूसरी तरफ फिर उसका हम प्रयत्न करते हैं कि जो बाबा कहते हैं बच्चे याद करो, याद करो कि तुम पहले कौन थे। अब याद करना तो मनुष्यात्मा का स्वभाव है, भूलना भुलाना उसमें हमें थोड़ी मेहनत लगती है, परंतु अगर देखा जाए कि वास्तव में याद करने में मेहनत इसलिए है क्योंकि बहुत समय से हम भूल चुके हैं। अब जो बहुत समय से बात भूल गई है, जब हमारे निश्चय में आ जाता है ये बात बरोबर ठीक है, ये राइट बात है, इसका प्रमाण हमें मिलता है, बाप हमें जो जो स्पष्टीकरण देते हैं वो बात हमारे समझ में आ जाती है, तो इसमें हमें अपने बुद्धि को, जब हमारे समझ में आ जाती है तो हमें उस समझ के आधार से अपनी बात को याद करना पड़ता है। वो सिमरती हमारी जागृत कैसे हो, उसके लिए हमें बार बार स्मरण करना पड़ता है। जैसे बाबा कहते हैं, बच्चे मन मना भव, मन को मेरे में लगाओ, मन मेरे में लगाओ, मना मन ईश्वर में लग जाए। लगेगा कैसे, जब बुद्धि उस बात को मानती है कि बरोबर ईश्वर मेरा बाप है। बाप समझने से मन उसमें लग जाता है। बुद्धि ने ये निश्चय किया बरोबर मेरा बाप है, और जब बाप और बच्चे का संबंध बन गया, इस बात को हमने माना, रियलाइज किया, तो फिर मन के अंदर वो बार बार स्मरण चलता है। और स्मरण करते 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 वो बात हमारी बुद्धि में ठीक स्मृति में आ जाती है, जिसको हम स्मृति स्वरूप कहते हैं। तो याद करना अगर देखा जाए तो सहज है, इसलिए हमारा योग सहज है। एक तो बाप का संबंध है इसलिए सहज है। अगर ये बात हमारे बुद्धि में पक्की बैठ जाती है, ये हमें निश्चय बैठ जाता है, बरोबर परमात्मा मेरा बाप है, और वो ही बाप हमें आकर के ये बात बताते हैं, तो बाप के संबंध से जो बात बाबा कहते हैं, उस बात को हमें बार बार स्मरण करना पड़ता है। मन का काम है स्मरण करना, जिसको हम दूसरे शब्दों में कहते हैं कि जो बाबा हमें ज्ञान सुनाते हैं, उसको हमें सारा दिन मनन करते रहना चाहिए। जितना हम उस पर मनन करते रहते हैं, मनन करते 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 वो बात हमारे अनुभव में आ जाती है। स्मरण करते 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 हमारी स्मृति जागृत हो जाती है, और हम स्मृति स्वरूप बन करके अपने उस वास्तविक स्वरूप का अनुभव कर पाते हैं। स्मृति माना केवल इतना ही नहीं कि जितना हमें बताया गया कि मैं वही आत्मा हूं, लेकिन उसके साथ मैं आत्मा कैसी, कितनी शुद्ध, कितनी पवित्र, उस समय के जो मेरे क्वालिफिकेशंस हैं, वो फिर से जितनी जितनी हमारी स्मृति जागृत हो जाती है, उतना उतना वो स्वरूप, अपना ही स्वरूप अपने आगे स्पष्ट हो जाता है। और जब अपना स्वरूप अपने आगे स्पष्ट हो जाता है, तो उसका अनुभव हम कर पाते हैं कि यथार्थ रूप में मैं आत्मा कितनी शुद्ध और पवित्र हूं। जब वो स्वरूप मेरे अनुभव में आता है, तो अनुभव में आना माना कि वो क्वालिफिकेशंस मेरे में इमर्ज हो जाते। जैसे अभी गीत में भी बताया कि योगी का तन मन शीतल हो जाता है, योगी के मुख से निरंतर शिव बाबा ही निकलता रहता है, वो एक ऑटोमेटिक हो जाता है। क्यों? उनकी बुद्धि वहां लगी ही रहती है। जो बात बुद्धि के अंदर बैठी हुई है, स्मृति में है, वो ही मुख से भी निकलती है, वो ही कर्मों में भी आती है। तो बुद्धि के अंदर ये बात मेरी बैठ जाए और सदा वो चलती रहे, उसके लिए पहले, क्योंकि बहुत समय भूल जाने के कारण जब बाप बताते हैं तो बात समझ में आती है, लेकिन वो याददाश्त बनी रहे, इसके लिए बाबा हमें भिन्न भिन्न प्रकार से, भिन्न भिन्न शब्दों में कई प्रकार की स्मृतियां हमें दिलाते रहते हैं। आत्मा के रूप से मैं अविनाशी आत्मा, अनादि आत्मा कैसी हूं, फिर पहले पहले मैं जब सृष्टि पर आती हूं तो मेरा स्वरूप कैसा है, जिसको अपना आदि स्वरूप हम बोलते हैं, तो इस प्रकार से बाबा हमें स्मृतियां दिलाते जाते हैं, चक्कर में मैं कैसे आई, कैसे मेरा पार्ट बनता गया, कितने मैंने जन्म लिए, कितने संबंधों में आए, किस प्रकार से ये मैं अपनी वास्तविकता को भूल गई, ये भी बाबा हमें स्मृति दिला करके सारा नक्शा हमारे सामने दे दे। तो जो स्मृतियां बाबा हमें दिलाते हैं, उन स्मृतियों को बार बार हमें स्मरण करना पड़ता है, बार बार अपने मन के अंदर उन बातों को दोहराना पड़ता है, जिसको हम कहते हैं कि हमें उन बातों को मनन करना चाहिए। तो जितना हमें जो ज्ञान बाबा सुनाते हैं, जिसको ज्ञान कहा जाता है, क्यों हमारे योग का आधार पहला ज्ञान है, ज्ञान से हमें हर बात की स्पष्ट नॉलेज मिल जाती है, हर बात हमारे आगे क्लियर हो जाती है, आत्मा क्या, परमात्मा क्या, मेरा पार्ट क्या, मेरा पार्ट कैसे है, हर आत्मा का पार्ट कैसे है, ये सारी बातें नॉलेज के आधार पर स्पष्ट हो जाती हैं। अब जो बातें नॉलेज से स्पष्ट होती हैं, उस सारे स्पष्टीकरण को हमें समझना पड़ता है। जब वो बातें हमारे बुद्धि में बैठ जाती हैं, तब फिर मन वो बातें बार बार याद करता है। मन का काम है संकल्प करना, मन माना संकल्प, ये मुझे आत्मा के जैसे स्थूल में कर्म इंद्रिया, कर्म करने के लिए ये कर्म इंद्रिया हैं, वैसे ये मुझे आत्मा की सोचने समझने याद करने की ये भी एक समझो शक्तियां। हर शक्ति का अपना अपना काम होता है। तो मन माना संकल्प करना, अर्थात जो कुछ हम सुनते हैं, जो हमारे बुद्धि में समझ बैठ जाती है, उसको बार बार याद करते रहते, बार बार स्मरण करना, बार बार याद करना, जिसको हम मनन कहते हैं। जितना समय सारे दिन में, जितना समय हमारे अंदर ये मनन चिंतन चलता रहता है, उतना ही हमारी बुद्धि के अंदर वो बात स्पष्ट हो जाती है। जैसे कि हम बुद्धि योग के द्वारा अपने आदि अनादि स्वरूप को प्रत्यक्ष देख लेते हैं। जैसे कहा ना कि जीवन एक दिव्य दर्पण बन जाती है, दर्पण माना जिसके अंदर हर बात स्पष्ट दिखाई पड़ती है। तो हमारी बुद्धि इतनी क्लियर हो जाती है, क्यों, किसके अंदर, योग के अंदर। योग हमारा अच्छा तब होता है, हमारा सदा ही बाप के साथ योग लगा रहे, इसमें मन की बड़ी एकाग्रता चाहिए। जितना मन एकाग्र होगा, माना एक में ही लगा हुआ होगा, एक के ही स्मरण में होगा, एक का स्मरण माना जो कुछ बाप ने हमें बताया है, उन्हीं चिंतन में मग्न होगा, और जब मन उसमें ही लगा हुआ है, तब फिर बुद्धि भी हमारी बड़ी क्लियर रहती है, शुद्ध हो जाती है। जब मन एकाग्र है और बुद्धि हमारी शुद्ध है, तो दोनों का आपस में मानो के दोनों एक बन जाती है। जो मनन मन करता है, माना जो शुद्ध संकल्प, जो बातें बाप ने हमें याद दिलाई है, मन के अंदर वो ही चिंतन है, मन उसी में मग्न है, और बुद्धि के अंदर वो ही निश्चय है, बुद्धि उस स्मृति स्वरूप में लगी हुई है, तो मानो मन और बुद्धि दोनों एक हो जाते हैं। ऐसा नहीं जो कुछ बुद्धि समझती है परंतु मन कुछ और चिंतन करता है, मन के अंदर अनेक प्रकार की हलचल होती हैं, ऐसा नहीं। जब मन की और हलचल होती है, अनेक प्रकार के संकल्प चलते हैं, तो कहा जाता है योग नहीं लगता। योग उसको ही माना जाता है, योग माना यूनियन। यूनियन किसका? कहने में आता, कहेंगे हम आत्मा और परमात्मा का आपस में यूनियन हो जाए, दोनों का आपस में मेल हो जाता है, आत्मा परमात्मा से मिलन मनाती है, इसको योग कहा जाता है। लेकिन आत्मा परमात्मा से मिलन कैसे मना सकती है? जब उसका मन, आत्मा का जब मन, संकल्प शक्ति जब एक में लगी हुई है, एक से सुनी हुई बातें जब सदा उसी के याद में मग्न है और बुद्धि उसमें उस स्मरण स्मृति स्वरूप में है, जब दोनों का फंक्शन एक है, माना दोनों ही एक में लगी हुई है, मन और बुद्धि एक बाप के तरफ जुटे हुए है, तब कहा जाएगा कि आत्मा परमात्मा से मिलन मनाती है और उस मिलन में ही उसको आनंद आता है, जबकि उसको और किसकी याद नहीं है। इसलिए सदा बाबा हम बच्चों को कहते हैं, बच्चे एक को याद करो, एक के सिवाय और किसको याद नहीं करो। सदा हमारा मन एक में लगा रहे, सदा उन्हीं का चिंतन, उन्हीं के बातों को याद करना, उन्हीं के संग हम कैसे थे, क्योंकि हम साकार में हैं, तो हम मन बुद्धि से काम ले सकते हैं, तो हमारी जो पुरानी स्मृतियां है, माना जो हमारी वास्तविकता है, जब हम निराकार रूप में भी अपने बाप के साथ निराकारी दुनिया में रहते हैं, तब हमारा स्वरूप कितना शुद्ध है, कितना पवित्र है, कितना दिव्य है। और जब पहले पहले बाप से आते हैं कर्म क्षेत्र पर, तो भी कितनी दिव्यता हमारे में है, वो जब बाबा हमें बताते हैं और आत्मा को वो स्मृति आती है और उस स्मृति में खो जाती है, तो वह स्वरूप, अपना वास्तविक स्वरूप अंदर ही अंदर वो जैसे उसके सामने से स्पष्ट है और उसी के आनंद में मग्न हो जाती है। जब उस आनंद में मग्न रहती है, तब वही फिर उन्हीं गुणों से इस जीवन में रहते, इस शरीर में रहते, इन कर्म इंद्रियों से इस प्रकार के दिव्य कर्म कराती रहती। और जब ऐसे कर्म इंद्रियों से दिव्य कर्म हो, श्रेष्ठ कर्म हो, उसको ही कहा जाता है कर्म योगी। अथवा इस प्रकार से अगर सारा दिन हमारे अंदर वो स्मृतियां बनी रहती हैं, तो इसको कहा जाएगा निरंतर योगी। वैसे अगर सोचा जाता है तो समझ में आता है कि निरंतर योग लगा के रखना बड़ी मेहनत का काम है। एक तरफ देखा जाए तो मेहनत का काम जरूर है, लेकिन मेहनत मुश्किल के रूप में नहीं, मेहनत अटेंशन के रूप में, माना निरंतर हमें वो अटेंशन जरूर रखना पड़े, वो हमारी स्मृति सदा जागृत रहे, इस बात का हमें अटेंशन जरूर रखना होगा। और अटेंशन रखने के लिए तो सदा हमें अंदर ध्यान रखना ही पड़ेगा। ये मेहनत अर्थात ये अटेंशन रखना, अब वो बात जब हमारे समझ में आ जाती है, बुद्धि में बैठ गई, हमने मान लिया और हमने उसका अनुभव भी पा लिया, तब तो फिर उसके लिए मुश्किल नहीं कह सकते। हाँ, फिर होता है कि इस जीवन में रहते, इस शरीर में होते, जो हमारा अनेक जन्मों का खाता है, उस खाते को भी, चाहे विकर्मों का खाता है तो भस्म करना पड़ता है, जो हमारे संस्कार है उसको हमें परिवर्तन करना है। उसके लिए हमें ये अटेंशन रखते हुए अपने को चलाना पड़ता है, तो फिर धीरे धीरे हमारे कर्मों में, हमारे बोल में, हमारी दृष्टि में, हमारी वृत्ति में, जितनी जितनी हमारी वृत्ति बदलती जाती है स्मृति के आधार से, जब हमारी स्मृति स्पष्ट हो जाती है, जब हम अपनी वास्तविकता के स्मृति स्वरूप का अनुभव कर लेते हैं, तब हमारे अंदर परिवर्तन शुरू होता है और हम उस स्मृति के आधार से अपने को परिवर्तन करते जाते हैं। क्यों? वह स्मृति हमें ये निश्चय दिलाती है वास्तव में हमारे संस्कार दिव्य है, वास्तव में हमारा स्वरूप शुद्ध है, अनेक जन्मों के संग के रंग में ये मेरा बदल गया है, अशुद्ध बन गए हैं। अब उस स्मृति के शक्ति के आधार से हम अपने में फिर से परिवर्तन ला करके अपने को शुद्ध और पवित्र बनाते जाएं। और इस बनने में हमें यह ज्ञान अर्थात जो रोज की पढ़ाई हमें मिलती है वह हमें मदद करती है। रोज रोज बाबा इसलिए हमें पढ़ाते रहते हैं, फिर हमें स्मृति दिलाते रहते हैं, फिर हमारी बातों को स्पष्ट करते हुए हमें बताते जाते हैं। और वो ही बातें जितना स्पष्ट रूप से बाबा बताते हैं, उतना ही स्पष्ट रूप से हम अपने अंदर मनन करते रहें, बार बार उसको स्मरण करके और उसके डेप्थ में जाते रहें, गुह्यता में जाते रहें, उसको अंदर ही अंदर हम सोचते रहें और उसी चिंतन में अपन को मग्न रखने का पूरा प्रयत्न करें, तो जितना शुद्धता के गुह्यता में जाकर के उन्हीं बातों को हम सोचेंगे, जितना शुद्धता में हम अपन को मग्न रखेंगे, तो वो शुद्धता में मग्न रखने की शक्ति हमारे में शुद्धता पैदा करती है, हमारे कर्मों में दिव्यता लाती है, हमारी कर्म इंद्रियों को शुद्ध बनाती जाती है। क्यों? हम उसी शुद्धता के महीनता में मग्न है। तो वो स्मृति हमारी वृत्ति को चेंज कर देती है, बदल देती है, और जब हमारी वृत्ति बदल जाती है, शुद्ध बन जाती है, हरे के प्रति वो हमारी वृत्ति शुभ भावनाओं वाली हो जाती है, तो हमारी दृष्टि भी हरे के प्रति रूहानी बन जाती है, और वह रूहानी दृष्टि हमारी बोल में मधुरता, कर्मों में दिव्यता और श्रेष्ठता ले आती है। क्योंकि कर्म इंद्रियां स्मृति और वृत्ति के आधार से कर्म इंद्रियों में परिवर्तन आ जाता है, कर्म इंद्रियों की चंचलता खत्म हो जाती है और कर्म इंद्रियां शीतल और शांत हो जाती है, तब हमारे कर्मों में दिव्यता और श्रेष्ठता आती है। जितने जितने हमारे कर्म श्रेष्ठ होते जाते हैं, दिव्य होते जाते हैं, उतना उतना पूर्व के जो संस्कार है वो हमारे परिवर्तन होते जाते, और ऐसे परिवर्तन होते अगर हमारा पूरा अटेंशन है अपने जीवन पर, तो परिवर्तन होते 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 वो ही हमारे ओरिजिनल संस्कार, दिव्य संस्कार हमारे में इमर्ज होते जाते। इसमें हमें अंदर ही अंदर जैसे कि अपना मास्टर बनना पड़ता है। एक तरफ बाप हमें बताते जाते हैं, समझाते जाते हैं, तो एक तरफ हमारा बाप से सदा संबंध जुटा रहे और बाप और बच्चे के नाते से जो बाबा कहते हैं उन बातों पर हम अटेंशन रख करके और उन्हीं बातों को जीवन में लाने का पूरा प्रयत्न रखे। लेकिन वो जीवन में लाना हमारे लिए सहज तब हो जाता है जब हमारी ये स्मृति सदा बनी रहती है। हमें इस बात का पूरा अटेंशन रखना होता है कि स्मृति में हमारे परिवर्तन ना आए। और बातें जो कुछ हमारे वर्तमान समय में जीवन में होती हैं, तो ये हमें समझना है ये हमारा पार्ट है, क्योंकि ये वर्तमान का पार्ट भी अनेक जन्मों के संबंध से बना हुआ है, तो ये मेरा पार्ट है जो मुझे बजाय करना है। लेकिन इस समय ये संगम का समय जबकि सर्वशक्तिवान बाप हमें मिला है, तो हमें अपनी वास्तविक जीवन फिर से हमें बनानी है इस लक्ष्य के आधार से, इस दृढ़ता के आधार से हम अपने जीवन में अपन को परिवर्तन करते ही जाते हैं। क्योंकि हर समय हर कदम पर हर बोल पर बल्कि हर संकल्प पर हमारा वो अटेंशन रहेगा कि जो बाबा बताते हैं जैसा बाबा बताते हैं वैसा ही मुझे सोचना है, वैसा ही मुझे कर्म करना है, उसके विपरीत कोई कर्म बल्कि संकल्प भी न चले। ये भी एक हमारी याद हो जाती है। इसको भी हम एक योग कहेंगे कि हर समय हमारी बुद्धि में ये याद है, ये अटेंशन है कि बाबा जो कहते हैं, तो जब हमारी बुद्धि में ये स्मृति है बाबा जो कहते हैं माना मेरा संबंध बाप से जुटा हुआ है, ये बाप और बच्चे का संबंध ऐसा नेचुरल बन जाता है जैसे लौकिक में बच्चे को जो माँ बाप कहे वो पालन करने के लिए उसका फर्ज है, वैसे हमारी जीवन में ये एक नेचुरल फर्ज हो जाता है कि जो बाबा बताते हैं वो मुझे अपने जीवन में जरूर धारण करना है। ये भी हमारी याद है, इसको भी हम योग कहेंगे। अगर इस प्रकार भी हमारा अटेंशन है तो ये भी निरंतर योगी की निशानी है। और इसी रीति हम निरंतर योग लगाते हुए कर्म करेंगे तो भी हमें याद है बाबा ने कौन से कर्म करना सिखाया है, तो बाबा भी याद है और जो बाबा की सिख्या है किस प्रकार से कर्म करो वो हमारा अटेंशन है, हम उसी प्रकार अपने कर्म करते हैं, तो ये भी मानो याद है, ये भी योग है, इसको भी निरंतर योगी कह सकते हैं। कर्म योगी जिसको कहा जाता है, कर्म करते हुए हमें ये याद रहे हमारा कनेक्शन बाप से जुटा हुआ हो, हमारे से कोई ऐसा कर्म न हो जो विकार के वश हो। विकार रहत श्रेष्ठ कर्म, विकार रहित कर्म हमारा तभी होता है जब हमारी स्मृति सदा जागृत है, सदा हमें याद है मैं कौन हूं, मैं किसका बच्चा हूं। जब ये स्मृति हमें है मैं किसका बच्चा हूं, तो जैसा बाप वैसा बेटा, जो बाप ने शिक्षा दी है वही मुझे करना है, जो बाप की हम बच्चों के प्रति आज्ञा है उसी आज्ञा अनुकूल ही हमें कर्म करना है। तो ये अगर सदा हमारे बुद्धि में याद रहता है, इसको भी हम योगी कहेंगे। इस प्रकार से भी हम निरंतर योगी बने रहते हैं तो हमारे कर्मों में श्रेष्ठता रहती है। सदा याद है मैं किसका बच्चा हूं, तो जैसा मेरा कुल, जैसा मेरा बाप और जैसा मेरा परिवार, ईश्वरी परिवार, उसके अनुसार सदा हमारी दृष्टि ईश्वरी यानी रूहानी बनी रहे और मुख से सदा हमारे वही बोल निकले जो बाबा हमें बताते हैं। हर समय इस बात का हमें अटेंशन रहे, क्योंकि हमें परिवर्तन होना है, अनेक जन्मों के संस्कार हैं, तो अनेक जन्मों के बराबरी में अभी के थोड़े समय में हमें इतने पुराने ओरिजिनल वास्तविक संस्कार इमर्ज करने हैं। तो अनेक जन्मों के भेंट में अभी का समय कितना हुआ, अगर इतने थोड़े समय के अंदर हम निरंतर अटेंशन न देंगे तो अपने वास्तविक संस्कारों को हम इमर्ज नहीं कर सके। इसलिए हमें सदा ध्यान रखना होगा। बाबा कहते हैं कदम कदम पर, परंतु कदम कदम तो क्या, हर संकल्प पर हमारा अटेंशन हो, क्योंकि जब मुझे ये स्मृति आ गई मैं आत्मा हूं, संकल्प मेरा है, मैं शुद्ध हूं तो मेरा संकल्प भी शुद्ध है, तो जैसा मेरा संकल्प अर्थात मेरा स्वरूप ऐसा है, ये मुझे अटेंशन रखना होगा। कोई भी अशुद्ध संकल्प, कोई व्यर्थ संकल्प मेरे में आना न चाहिए, ये मुझे अपनी दृढ़ता बनानी होगी। जब हमारे अंदर ये दृढ़ता रहती है तो व्यर्थ संकल्प आ नहीं सकता है। क्यों, मैं मालिक हो गई, मैंने अपने में वो मालिकपन की अथॉरिटी अर्थात संकल्प मेरा है, मैं शुद्ध आत्मा हूं, मैं परम पवित्र पिता की संतान हूं। ऐसे पिता की संतान का संकल्प व्यर्थ हो नहीं, अशुद्ध हो नहीं सकता है। अगर ये मेरी दृढ़ता बनी हुई है तो अशुद्ध संकल्प मेरे में नहीं उठ सकता है। लेकिन ये दृढ़ता मुझे पूरा समय रखनी पड़े, अर्थात ये अटेंशन हमें रखना पड़े कि ये सदा मेरी दृढ़ता बनी रहे। कोई भी व्यवहार की बात में, कोई भी परिस्थिति आने पर ये मेरा निश्चय, ये मेरी दृढ़ता, ये मेरी स्मृति मेरे से भूले नहीं, ये हमें अटेंशन रखना होगा। अगर कोई परिस्थिति वश ये मेरी स्मृति मेरे से भूल जाती है तो स्वाभाविक है हम परिस्थिति वश हो जाते हैं, हम अपने स्वमान में, हम अपने बाप की स्मृति में पूरा नहीं रह सकेंगे। इसलिए हमें ये हर समय अटेंशन रखना होगा कि यह स्मृति हमें भूले नहीं। जैसे कि हम स्वयं को भी, जब हमने ये जान लिया मैं सर्वशक्तिवान की संतान हूं, तो सर्वशक्तिवान के संतान के नाते हमारे में वो अथॉरिटी, वो शक्ति, वो मालिकपन की अथॉरिटी रहती है, जिससे हम स्वयं को भी चेक कर सकते हैं मेरा संकल्प क्या, मेरे बुद्धि के अंदर क्या चलता है। जब ये हमारे बात अटेंशन में आ जाती हैं और हम अपने संकल्प के ऊपर पूरी चेकिंग रख करके और उसको परिवर्तन कर सकते हैं। कोई को अगर क्वेश्चन पूछना हो तो पूछ सकते। बात तो सहज सीधी है और स्पष्ट है, फिर भी किसको पूछना है तो पूछ। जब तक दारी आए तब तक हम योग में ही बैठते हैं और ये सहज योग। हेडफोन्स उतार दिए। अच्छा, वो बुलाने गई होंगी। चलो, योग के लिए भले जैसे आगे आके बैठते हैं ना, शायद अपनी तैयारी करके बैठ जाओ, तब तक दादी पहुंच जाएगी।